द हॉन्टेड स्कूल। आज की कहानी का नाम है द हॉन्टेड स्कूल। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। हम लोग पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे, मैं और मेरे कुछ साथी जो कि बैक बेंचर्स की लिस्ट में थे, पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन हम अनुशासनहीन बिल्कुल भी नहीं थे। हम काम तो अपना करते थे लेकिन हमारा थोड़ा खेल में ध्यान ज़्यादा होता था, इसलिए हम सिलेबस में थोड़े पीछे रह जाते। टीचर्स को भी ये पता था कि ये बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा खेल में ध्यान ज़्यादा होने के कारण पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि देखो, आज से परीक्षा के केवल 2 महीने बचे हैं, अगर आज से तुम मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो अच्छे नंबर ज़रूर ले आओगे और मैं इसमें तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, कैसे सर? तो टीचर ने कहा, देखो आज से हम एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। तुम ज़्यादा दूर नहीं रहते स्कूल से, तुम्हारा घर पास में ही है ना? मैंने कहा, ज़्यादा पास तो नहीं, तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन क्या बात है आप बताइए। उन्होंने कहा कि क्यों ना शाम को आ जाओ 6-7 बजे और हम 9-10 बजे तक रात को क्लास लगा लेते हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं बात करता हूँ, मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा और अपने 4 दोस्तों से ही पूछा। तो भी बोले, अरे यार कोई काम तो है नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा, ठीक है सर, आज अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। बात क्या करते हैं? हाँ ही समझिए। तो टीचर ने कहा, चलो फिर आज रात का ही प्रोग्राम बना लो, तुम लोग पहुँच जाना और पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन कर देना, मैं तो यहीं 2 मिनट के रास्ते पर ही आ जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। हालांकि उस समय इतने फ़ोन होते नहीं थे, ये बात तकरीबन 2010 की है, उस समय आज की तरह इतने मोबाइल सबके पास नहीं थे, कीपैड फ़ोन ही चलते थे, नोकिया के, वही हमारे पास होता था। तो हम लोग स्कूल में तकरीबन 7 बजे पहुंच गए और मैंने कहा, चलो सर को फ़ोन कर देते हैं भाई, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पर हमारे बैठे रहने का फ़ायदा ही क्या। मैंने फ़ोन निकाल कर सर को कई घंटियाँ मारी लेकिन सर ने फ़ोन उठाया नहीं। तो बाहर से वहाँ का PN आते हुए बोला, अरे सर की तो बेटी की तबीयत ख़राब थी, वो तो वहीं होंगे आज। तो मैंने कहा, हमें तो यहाँ पर बुला लिया उन्होंने, हमें ही फ़ोन कर देते। तो PN बोले, उनके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आएगा, उन्होंने मुझे बता दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम यहाँ कब से बैठे हो, 2 घंटे तो हो गए। मैंने कहा, अब जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज गए थे। तो मैंने PN से कहा, रात तो काफ़ी हो गई है, हम लोग अब अकेले तो घर जा नहीं पाएंगे। तो PN ने कहा, देखो अगर मैं तुम्हें छोड़ के आ पाता तो ज़रूर जाता, लेकिन मेरा भी यहाँ रहना ज़रूरी है, मैं वॉचमैन का भी काम करता हूँ, स्कूल में भी नुकसान हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। मैंने कहा, चलो अब आ ही गए हैं तो आज की रात स्कूल में गुजार ली जाए। लेकिन मेरा एक दोस्त बोला कि देख भाई, यहाँ पर 10-15 दिन पहले ही एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिरकर मरा है, देख ले कहीं दिक्कत ना हो जाए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो आज की रात स्कूल में बिताते हैं। ये कहकर हम लोग बेंच पे बैठ गए। हालांकि वो फरवरी का महीना था, दिन में तो इतनी ठंड नहीं होती थी लेकिन रात को ठंड का पता चलता था। हालांकि ज़्यादा तेज़ तो ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी जब बेंचों पे बैठे थे हम वहाँ तो ठंड को महसूस तो कर पा रहे थे, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो मेरा एक दोस्त था रोहित, उसने कहा, अरे भाई काफ़ी टाइम से बैठे हैं, मैं बाथरूम होके आता हूँ। मैंने कहा, ज़रा ध्यान से जाना, वो बच्चे की आत्मा पता नहीं कहाँ भटक रही है। हमने उसके साथ मजाक किया, उसने कहा, देखो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर कोई निडर है तो वो मैं हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं ही जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम डरपोक अगर जाना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। हम उस समय 3rd फ्लोर पे बैठे थे और बाथरूम नीचे वाले फ्लोर पे था, वो नीचे चला गया, हम लोग वहाँ बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी वो चिल्लाते हुए ऊपर आया, उसने कहा, वहाँ बाथरूम में कोई है। मैंने कहा, अच्छा अगर हम लोग डर नहीं रहे तो हमें डराने के लिए नया स्टंट कर रहे, कौन है वहाँ? उसने कहा, अरे अरे मैं कोई स्टंट नहीं कर रहा, मेरी बात मानो, वहाँ पर एक बच्चा है। मैंने कहा बच्चा है, चलो चलते हैं। हम लोग वहाँ सब गए, हमने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा अच्छा तो तुमने हमें बेवकूफ़ बना ही दिया। उसने कहा अरे बेवकूफ़ नहीं बना दिया, अंदर एक बच्चा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा है। उसका चेहरा सफ़ेद था, उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। मुझे देखकर वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उसे अब भी नहीं भूल पा रहा हूँ। ये कहकर रोहित थोड़ा सा डर में सहम गया। हमने भी उसकी आंखों में डर देख लिया था। वो बोला कि तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं बाथरूम कर लेता हूँ। इस बात को सुनकर मुझे तो यकीन हो गया था कि जो भी हो रोहित अब झूठ नहीं बोल रहा, उसकी बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर है। रोहित इतनी आसानी से डरने वालों में नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मुझे भी डर लग रहा था और मेरे जो दोस्त थे उनको भी काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी बता दी थी जो कि डरावनी थी। हम लोग वहाँ खड़े रहे और फिर ऊपर आकर बैठ गए। मैंने कहा क्यों ना घर चलते हैं, तो दूसरे दोस्त ने कहा अरे 10 बज गए, इस समय जाएगा तू? हमारा स्कूल है तो सही, लेकिन ये कहाँ पर है तुझे पता है? खेतों की तरफ है, आगे आगे क्या है 2-3 किलोमीटर तक सुनसान है, और इस टाइम पे पता तुझे नशे पते करने वाले लोग पता कितने ज़्यादा रहते हैं, हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं सुनील, मोहित ने कहा। मैंने कहा देखो भाई अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, जो रोहित को दिखाए कहीं वो हमें ना दिख जाए। तो मेरे एक दूसरे दोस्त ने कहा जिसका नाम अंकित था, उसने कहा कि अरे ये सब बकवास है, हम लोग यहाँ पर उसी बच्चे की बातें कर रहे थे इसलिए इसको वो दिख गया। बच्चा क्या है यहाँ, कहाँ मरा था वो बच्चा? तो रोहित ने कहा देखो वो ऊपर वाले लास्ट फ्लोर पे जो हॉल है ना उसमें एक खिड़की खुली थी, वो बच्चा वहीं बैठा था और वहीं से फिसल कर नीचे गिर गया था। अंकित ने कहा इसका मतलब है सबसे ज़्यादा खतरा उस खिड़की में है और उस हॉल में है, मैं वहीं जाऊँगा। हम तुरंत उछल कर बैठ गए। अरे अरे क्या कह रहे हो तुम उस हॉल में जाएगा? अरे तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैंने कहा। अंकित ने कहा देखो तुम लोग डरपोक हो सकते हो लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं डरूंगा, मैं उस हॉल में जा रहा हूँ। जी कहकर अंकित वहाँ से उठा और उस हॉल की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा अरे अंकित क्या कर रहा है तू यार, तू हमारे साथ आया है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है तेरे प्रति कुछ। अंकित ने कहा तुम लोग बस डरना बंद कर दो, यही बहुत है। ये कहकर अंकित वहाँ से उठा और ऊपर वाले हॉल की तरफ चला गया। अंकित हॉल में जाने ही वाला था कि मैं उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया और बोला अरे अंकित ये बेवकूफ़ी मत कर, अंदर आके बैठ जा, हॉल में गड़बड़ है कुछ ना कुछ, वहाँ पर पीएन को भी कुछ ना कुछ दिखा था, उसने मुझे बताया था कल ही। अंकित बोला देखो तुम लोग अपने डर की कहानी मुझे मत सुनाओ। ये कहकर अंकित अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, अंकित के अंदर घुसते ही वो चिल्लाते हुए बाहर भाग गया। उसने कहा तुम लोग सही कह रहे हो, इस हॉल में ज़रूर कुछ ना कुछ है। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? अंकित ने कहा जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे लगा किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे मेरे पैर पर किसी के नाखूनों के निशान दिख रहे हैं अब भी, मुझे लगा कि किसी ने अपने नाखूनों को मेरे पैर में चुभोया हो, मुझे अब भी दर्द का एहसास हो रहा है। अंकित ने कहा। मैंने कहा अरे मैं कह तो रहा था ये पूरा का पूरा स्कूल अब हॉन्टेड बन चुका है। ये कहकर हम वहाँ से नीचे की ओर भागने लगे। भागते भागते हम बिल्कुल नीचे उतर आए कि हमने देखा कि पीएन साहब ने बैठा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। पीएन ने कहा वो बच्चा जो मरा था वो कोई और नहीं मेरा ही लड़का था, और इस स्कूल ने ये बात छिपा ली, मेरा बेटा तो बदला ले रहा है और आज तुम लोगों को मारकर अपने बेटे का बदला इस स्कूल से मैं भी लूँगा, तुम लोगों की मौत इस स्कूल की बदनामी बनेगी और इस स्कूल पर ताला लगेगा। ये कहकर वो पीएन डंडा लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसने
रोहित और मोहित को तो एक डंडा मार भी दिया। उसके सर पर डंडा लगने के कारण दोनों के सर से खून आ रहा था। उसने डंडा मेरी तरफ भी बढ़ाया कि तभी किसी ने हवा में ही डंडा पकड़ लिया। हमने देखा तो कोई और नहीं, हमारे टीचर थे। उन्होंने डंडा जोर से खींचा और एक जोर का डंडा उस पीएन के मुंह पे दे मारा। पीएन दूर जा पड़ा और दर्द से कराने लगा। टीचर ने कहा, मुझे इस पे शक पहले ही था। मैं अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल चला गया था, लेकिन वहाँ जाकर मुझे ख्याल आया कि ये पीएन कुछ ना कुछ साजिश रच सकता है, क्योंकि कल जब हम एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहे थे तो इसने फ़ोन उठाया और किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि कल मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जिससे बच्चों को बेहोश किया जा सके, और एक ऐसा चाकू जिससे एक ही बार में किसी की गर्दन काटी जा सके। ये बातें मैंने सुन ली थी और इन्हीं बातों से मुझे पता लग गया था कि ये पीएन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, और मैं आज इसे रंगे हाथों पकड़ने ही वाला था। लेकिन उस ज़रूरी काम के चक्कर में, जो मेरा बेटा बीमार था, वहाँ जाने के चक्कर में सब कुछ मेरे दिमाग से उतर ही गया। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया, मैं तुरंत वहाँ से दौड़ता हुआ चला आया। हमने सर का शुक्रिया अदा किया। सर ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा जो तुम्हें दिखा है, और वो देखो। हमने जब ऊपर देखा तो बच्चा वहीं खड़ा था। सर ने कहा, वो बच्चा असली है, वो एक असली आत्मा है, लेकिन वो एक अच्छी आत्मा है। उसने तुम्हें थोड़ा परेशान ज़रूर किया, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दिन में कोई दिक्कत नहीं है, रात को यहाँ आने से बचना है। सर ने कहा, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, तुम लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। हम लोग सर की गाड़ी में बैठे और सर ने हमें अपने अपने घर पर ड्रॉप कर दिया। उस दिन के बाद नाइट में स्कूल में जाने की बात से ही हम लोगों को डर लगने लगा। हमने कहा, जो भी तैयारी करेंगे दिन में ही कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास की हमें ज़रूरत नहीं। और यकीन मानो, उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे नंबर भी लिए, वो भी बिना एक्स्ट्रा क्लास के, क्योंकि उस घटना के बाद तो हमें रात को भी घर में पढ़ने में भी डर लगता था। तो हमने तैयारी तो की, लेकिन दिन में, और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी, आप लाइक कमेंट करके बता सकते हैं, और सुनील हॉरर स्टोरीज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।